इसलिए मूसा अलैहि सलाम का ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। स्कॉलर्स कहते हैं कि कश्ती में जो सुराख किया गया था, जो उसका वुडन प्लैंक निकाला गया था, उसमें चांसेस थे कि कश्ती वाले डूब जाएंगे, चांसेस थे, लेकिन इस एक्शन में तो एक इंसान को कत्ल कर दिया था, वापस तो नहीं आ सकता कत्ल करने वाला, तो इसलिए मूसा अलैहि सलाम को जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। स्कॉलर्स इसलिए कहते हैं कि गुनाहों के भी लेवल्स होते हैं, जैसे नेकियों के लेवल्स होते हैं। एक नेकी है आपकी, आपने रास्ते में से पत्थर उठाकर एक तरफ कर दिया, ये भी नेकी है। एक नेकी है आपकी कि आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, दिन रात अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के अपलिफ्ट के लिए जो हैं वो काम करते हैं, लोगों को अल्लाह से करीब जोड़ने के लिए, अल्लाह के दीन की तरफ लाने के लिए काम करते हैं, वो भी नेकी है। तो दर्जात तो दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह से स्कॉलर्स कहते हैं गुनाहों के भी दर्जात होते हैं। तो जैसे उस कश्ती वालों की कश्ती में सुराख करना, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना भी गुनाह था, लेकिन मूसा अलैहि सलाम देख रहे थे कि किसी इंसान को बेकसूर कत्ल कर देना उससे बड़ा गुनाह है। तो अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम कहाँ कितने गुनाह कर रहे हैं। जैसे हम पिछली क्लासेस में एक बात सुन चुके हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि किसी छोटे गुनाह को भी मामूली ना समझे, इसलिए कि छोटा गुनाह अपने साथ और गुनाह भी लेकर आता है। और मूसा अलैहि सलाम यही अपनी टीचिंग्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसलिए उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ये बहुत ही बुरा काम किया, और ये कत्ल का फैक्टर उनके लिए जो था ये बहुत बड़ी जो थी वो एक दलील बन गई। आयत नंबर 75, हज़रत खदर ने कहा कौला अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मईया सबरा। हज़रत खदर ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ जो है वो हरगिज़ सबर नहीं कर सकते। सबर का मतलब आपको पहले भी बताया था, यू कुड नेवर कीप अ कंपनी विद मी, आप मेरे साथ ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे, बिकॉज आप जिन बातों को नहीं समझ सकते वो आप पिछली आयत में पढ़ आई हैं कि आप हैंडल ही नहीं कर सकते उन मामलात को जिनकी हकीकत का इल्म जो है वो मुझे दिया गया है। अगर आप आयत 72 को देखें तो यही अल्फाज थे हज़रत खदर के, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ सबरा, और यहाँ आया है अलम अकुल ल का, ये दरमियान में एक ल का ऐड हो गया है, अलम अकुल ल का इन्नका लन तस्ततीअ मईया सबरा। हज़रत खदर ने जब दूसरा जुमला बोला तो ल का ऐड कर लिया, जैसे आप कहती हैं मैंने तुम्हें नहीं बताया था, आप एक कहते हैं मैंने बताया था, आप सामने बैठे किसी से बात कर रही हैं और आप कह रही हैं कि नहीं कर सकेंगे आप, मैंने नहीं कहा था तुम नहीं कर सकती, तो अंदाज़ आपका जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, अंदाज़ में आपके ताकीद आ गई। यही आपको आयत नंबर 75 में ताकीद महसूस हो रही है। हज़रत खदर ने कहा अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मईया सबरा, यानी इस मरतबा स्कॉलर्स कहते हैं कि हज़रत खदर जो थे वो ज़रा एग्रेसिव हो गए मूसा अलैहि सलाम को एहसास दिलाने के लिए कि देखें आपने फिर वादा तोड़ा है। अवकदा लिल इताब, जो ताकीद आई हज़रत खदर की तरफ से वो एक एग्रेसिव अंदाज में इताब के लिए गुस्से के अंदर आई थी एक तरह से। तो मूसा अलैहि सलाम उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे जिस पर हज़रत खदर ने यह बात बोली। इस पर अहादीस में आता है कि मूसा अलैहि सलाम को हया आ गई, सेकंड टाइम गलती की थी ना, एक गलती की फिर मौका मिला, फिर मौका मिला तो एक और गलती कर दी, अब मूसा अलैहि सलाम को हया आ गई। वह हुआ मूसा इस्तहया फिल्लाह, रसूलल्लाह कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम को अब ये बात जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो प्रेशराइज करने लग गई, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप मुझे लास्ट चांस दे दें, खुद ही से उन्होंने कह दिया। जब पहली मरतबा गलती की थी तो कहा था कि ला तो आखिर नहीं, प्लीज़ मेरे इस गलती को काउंट मत कीजिए, मुआखजा मत कीजिए मेरा, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि इसको इग्नोर कर दें। अब उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला इस मरतबा, बल्कि खुद ही एक कंडीशन सेट कर दी कि ला तो आखिर नहीं कहा, उन्होंने कहा वकानत अव्वलु निस्यान वसानियतु शर्त, पहली गलती के बाद उन्होंने कहा था कि प्लीज़ ये भूल हुई थी मुझसे, प्लीज़ मुझे इग्नोर कर दें, इस गलती को माफ़ कर दें। और स्कॉलर्स कहते हैं दूसरी मरतबा गलती की तो उन्होंने शर्त रख दी कि अच्छा अब ये कंडीशन है, अगर अब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो फिर आप मुझे अपने साथ बेशक मत रखिएगा। आयत नंबर 76 में फरमाया कौला इन सअल्तुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिबनी
कद बलगता मिन लदुन्नी उज़्रा।
मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि चलिए अब आपको मेरी तरफ से एक एक्सक्यूज़ मिल गया है, अगर अब मैंने आपसे सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मफहूम आता है, आपने फरमाया अल्लाह मूसा पर रहम करे, अगर वो सब्र करते तो वो हज़रत खदर के साथ और बहुत से वंडर्स और बहुत से मौजज़ात देख लेते। यानी मूसा अलैहि सलाम का ये मुकाम वो था कि जैसे मूसा अलैहि सलाम अपने आप से थोड़ा सा नाउम्मीद हो गए थे कि मैं सब्र नहीं कर सकूंगा, तो उन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि अच्छा ठीक है अब मैं आपकी बात मान गया। اب پھر وہ دونوں آگے بڑھے, آیت نمبر 77, فانطلقا, پھر دونوں چلے, حتی اذا اتیا اہل قریت, یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے, ایک ولیج کے پاس آئے, ایک ولیج میں آئے, استطعما اہلہا, ان دونوں نے ان سے کھانا مانگا, استطعما انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا, کھانے کی درخواست کی, مسافر تھے, سواری نہیں تھی, تھک گئے تھے, تھکن تھی, بھوک لگ رہی تھی, تو انہوں نے دونوں نے مہمان نوازی کی ریکویسٹ کی اس گاؤں والوں سے, مگر کیا ہوا, گاؤں والوں نے انکار کر دیا, فابو, انہوں نے واضح انکار کر دیا, صاف انکار کر دیا, اَن یُدَیِّفُوہُمَا, کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں, یعنی کہ ہاسپٹیلٹی سے انکار کر دیا, کنجوس لوگ تھے, سٹنجی لوگ تھے, ضیافت سے, مہمان نوازی سے انکار کر دیا. امام ابن القیم کہتے ہیں, اشق الناس البخلا یا ایشون عیشت الفقرا و یحاسبون حساب الاغنیا, سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں سٹنجی ہوتے ہیں, بخیل ہوتے ہیں, کنجوس ہوتے ہیں, اور اپنے لیے آخرت میں اللہ کا غنی ہونا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کنجوس ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے, گھر والوں پر خرچ بھی کیا جائے, اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے, مہمانوں کا اکرام بھی کیا جائے, مسافروں پہ خرچ بھی کیا جائے, غربا اور مساکین کی مدد بھی کی جائے. اسلام بیلنس سکھاتا ہے. تو یہ حضرت امام ابن القیم یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو اصل میں کنجوس ہوتا ہے وہ کیسے اللہ کے غنی ہونے کی صفت کو آخرت میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کنجوس انسان کا. ایک مرتبہ ایک کنجوس انسان جو تھا وہ ڈوب رہا تھا پانی میں, تو وہ جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے میں انسان ہاتھ پیر مارتا ہے نا, تو وہ بھی ہاتھ پیر مار رہا تھا اپنے, تو جب ہاتھ پیر مار رہا تھا تو قریب سے دو لوگ گزرے, تو ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا, پلیز گیو می یور ہینڈ, آپ مجھے اپنا ہاتھ دیجیے, تو اس نے ہاتھ جو ڈوبتے ڈوبتے انسان کر رہا تھا وہ بھی پیچھے بند کر لیا اپنے ہاتھ, تو دوسرے نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنا کنجوس ہے, اسے کہو ٹیک مائی ہینڈ. تو جب اس نے یہ کہا تو فوراً اس دوسرے شخص نے جو ڈوب رہا تھا, جو کنجوس تھا, اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اس کو باہر نکال لیا. تو کنجوسی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور کہانی مجھے یاد آ رہی ہے کنجوسی کی. ایک مرتبہ ایک کنجوس شاپ کیپر تھا, اور پرانے وقتوں کی بات ہے, کنجوس شاپ کیپر تھا, اور اس کے پاس کوئی سامان لینے آیا, کوئی سامان اس نے لیا, اور اس کے بعد اس نے جس کو چینج وینج دیا, پیسے دیے, تو اس میں کچھ کوائن تھے اس کے, تو چار پانچ کوائن اس کے پاس آئے, ایک کوائن اس کا رول ہوتا ہوا نیچے گر گیا. تو کبھی ہوتا ہے نا کوائن رول کرتا ہے تو وہ دور 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 تک بالکل رول ہوتا ہوا جاتا جاتا ہے, تو یہ شخص بھی اپنے اس کوائن کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا, رول ہوتا ہوا جا رہا ہے, اس نے کہا رکتا ہے تو میں پکڑتا ہوں, اتنے میں وہ رول ہوتا ہوتا گٹر میں گر گیا. اب اس کا مطلب ہے گٹر میں گرا تو اس کا وہ کوائن تو کھو گیا, تو اس کے اوپر یہ شاپ کیپر بے ہوش ہو گیا, مطلب فینٹ ہو گیا کہ میرا ایک کوائن مجھ سے کھو گیا. تو لوگ پریشان ہو گئے جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے, ان میں ایک ٹریڈیشن تھا وہ بے ہوش کو جو ہے ہوش میں لانے کے لیے, فینٹڈ انسان کو دوبارہ سے ذرا نارمل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے, اس کو پیاس سنگھاتے تھے. تو انہوں نے پیاس لی, اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو پیاس سنگھائی, اب اس کو ہوش آ گیا. تو انہوں نے اس جب ہوش آتا ہے نا انسان کو, اللہ نہ کرے کبھی کوئی بے ہوش ہوا, لیکن اگر آپ میں سے کبھی کسی نے اس بے ہوشی کو محسوس کیا تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی میموری یاد نہیں رہتی کہ کیا ہوا تھا. تو اس شخص کو بھی یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا تھا, اس نے پوچھا میں بے ہوش کیوں ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے آپ سے کوئی سامان خریدنے آیا تھا, آپ کا ایک کوائن شاید کہیں گر گیا تھا, اس کی وجہ سے آپ جو تھے وہ فینٹ ہو گئے تھے. تو اس نے کہا میں ہوش میں کیسے آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے پیاس سنگھائی آپ کو. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے پیاس کہاں سے لی؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی شاپ میں جو پڑی ہوئی ہے, گیس واٹ, پھر بے ہوش ہو گیا. تو کنجوس انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. ان گاؤں والوں کی جو یہاں پر صفت آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ سٹنجی لوگ تھے, بخیل لوگ تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کنجوسی پر بہت غصہ آیا, اس لیے کہ یہ تھکے ہوئے آئے تھے. اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں, اتیا اہل القریہ, ایک بھی اس پورے گاؤں میں ایسا انسان نہیں تھا جو ان کی مہمان نوازی کرتا, مطلب واقعی تکلیف دہ بات ہے. ایک انسان کنجوس ہوتا ہے, دو کنجوس ہوتے ہیں, تین ہوتے ہیں, پوری کی پوری بستی کنجوس تھی. اس کا مطلب یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک سے نہیں پوچھا تھا, دو چار سے پوچھا تھا, لیکن سبھی نے انکار کر دیا تھا. اور اہل قریہ بتا رہا ہے کہ پورا گاؤں جو تھا وہ سٹنجی لوگوں سے بھرا ہوا تھا. قریہ آتا ہے کسی چھوٹی جگہ کے لیے. اس قریہ کے لفظ کو یاد رکھیے گا, ابھی آگے آپ کو میں اس کا کمپیریزن کر کے بتاؤں گی. قریہ چھوٹی بستی کیوں کہی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ قریہ آتا ہے چھوٹے گاؤں کے لیے, ولیج کے لیے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ان الفاظوں کے ذریعے کہ یہ ان الفاظوں میں بڑی گہرائی ہے. جب انسان جو ہے وہ کنجوس ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ آگے خرچ کرنے کے لیے بھی تنگ ہو جاتا ہے, اور جب تنگ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہاں قریہ آیا ہے نا, آگے جب اسی کو اسی بستی کو ڈیفائن کیا جائے گا تو اس کے لیے مدینہ کا لفظ آئے گا, اور وہاں مدینہ کا لفظ کیوں آئے گا پھر اس کو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنیت کو ڈسکرائب کیا ہے. گاؤں والے تھے, سارے کے سارے کنجوس تھے, سٹنجی لوگ تھے, بخیل لوگ تھے, اور جو سٹنجی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, ان کو آئینے میں بھی صرف اپنی ذات نظر آتی ہے اور دنیا میں چلتے پھرتے بھی صرف اپنی ذات پر ہی ان کا فوکسڈ رہتا ہے, سیلف سینٹرڈ لوگ. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی کہ مسافر کو دیکھ کر انہوں نے کھانا آفر کرنا تو دور کی بات, مسافروں نے کھانا مانگا اس کے اوپر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا. فابوا ان یضیفوہما, تو ان کے اندر کسی قسم کی ہاسپٹیلٹی نہیں تھی. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسافر کی تواضع کرنا اور مسافر کے ساتھ مہمان نوازی کرنا یہ نون ہسٹری ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, ابھی کا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے, اور ہمارے ہاں بھی یہ ٹریڈیشن ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے مہمان کا اکرام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے شریعت سے کہ جب مہمان آئیں تو کم سے کم 3 دن تک آپ ان کو بہترین طریقے سے ان کی ہاسپٹیلٹی کیجیے, ان کے ساتھ مہمان نوازی کیجیے. تو مہمان کو دیکھ کر آنکھیں مت ماتھے پر چڑھا لیا کریں, مہمان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جایا کریں. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, مہمان اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں, ہمارا رزق نہیں کھا جاتے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کا کوئی کھانا آرڈر کرتے ہیں, اسی وقت بیل بجتی ہے, بچہ کہتے ہیں اللہ میں تو جا رہی ہوں اپنے کمرے میں. اگر وہ کھانے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو جو ان کا رزق ہوگا وہ کھا کے جائیں گے, جو نوالا ان کے نصیب کا ہے آپ اور میں روک نہیں سکتے, اور جو نوالا ان کے نصیب کا نہیں ہے آپ کتنا بھی سامنے رکھ دیں آپ ان کو کھلا نہیں سکتے. ہم کئی مرتبہ اپنی زندگی میں اس رزق کے معاملے کو آبزرو کر چکے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے اندر یہ خاص طور پر چیز ہے, اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمانوں کا اکرام کیا جائے, اور یہ بھی اسلام کا کلچر ہے, یہ اسلام کا ٹریڈیشن ہے کہ مسافر جب کسی علاقے میں آئیں تو وہاں پر کمیونٹی میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو لوگ ان کا ضرور خیال کریں. اگر پوری کمیونٹی ان کا خیال نہیں کرے گی تو پوری کمیونٹی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جائے گی, ایک دو لوگ بھی ان کا خیال کر لیں گے تو کمیونٹی کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا. تو ایک ٹریڈیشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمیشہ سے چلا آتا تھا. اور آپ کو یہاں ایک چیز اور محسوس ہو رہی ہے جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ دو اتنے بڑے, اتنے بزرگ, اتنے جلیل القدر, اتنے ہولی لوگ تھے, جیب میں پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. پیسہ ہوتا تو پیسے دے کر کھانا خرید لیتے, دونوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور مینشن کر دی کہ آپ کے علم اور آپ کے ایمان اور آپ کے اللہ سے کلوزنس کا تعلق آپ کے مال سے نہیں ہوتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ویلتھ, اٹس اے میٹر آف یور ہارٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور اللہ تمہارے جو ہے وہ مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو آگے کیا آیا؟ آگے آیا فواجد فیھا جدارن. اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ بستی والوں نے بالکل بھی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, الٹا انکار کر دیا, اور انہوں نے کیا دیکھا؟ فوجد فیھا جدارن, ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض, اور دیوار جو تھی, یرید ان ینقض دیوار کے لیے آیا ہے, دیوار جو تھی اٹ واز اباؤٹ ٹو فال. بلکہ اگر آپ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کلوزسٹ ٹو عربک کریں گے تو اس کا ٹرانسلیشن بنے گا وال وانٹنگ ٹو فال ڈاؤن, دیوار گرنا چاہتی تھی, یہ ترجمہ بنتا ہے. اب یہاں پر اسکالرز نے سوال اٹھائے ہیں, دونوں سائڈس پر اسکالرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹافور ہے, یرید ان ینقض, کہ دیوار گرنا چاہتی تھی, اس لیے کہ دیوار تو نہیں گرنا چاہتی. دیوار کی کوئی ول ہوتی ہے؟ دیوار کی تو کوئی ول نہیں ہوتی. کیا دیوار سوچتی ہے؟ دیوار تو نہیں سوچتی. تو اس بعد ایک سائڈ پر اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا میٹافور ہے, یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی, مطلب اٹ واز اباؤٹ ٹو فال, وہ بس گرنے والی تھی. اور آپ کو پتہ ہوگا, آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں, عربی گرامر کے, علم البلاغہ کے اندر میٹافور ایک پورے کا پورا جو ہے علم ہے, مجاز, علم المجاز جو پورا آتا ہے میٹافور کا علم. قرآن کے اندر بہت سے میٹافور آتے ہیں. بعض اسکالرز ہیں, اور وہ اسکالرز ہیں جو کہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں ٹریڈیشن, اسلامک ٹریڈیشن کے اندر, جیسے امام ابن القیم الجوزی, وہ کہتے ہیں قرآن میں میٹافور نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, वो कहते हैं कुरान में मेटाफोर नहीं है, और वो उसकी दलील देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत देते हैं। आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से किसी को भी मान लें। क्योंकि हम यहाँ तदब्बुरुल कुरान के लिए बैठे हैं तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है जो आपके कान से गुजर जाएगी, और इंशाल्लाह इससे आपके अंदर इल्म हासिल करने की और ख्वाहिश पैदा होगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का कहना यह है कि कुरान में तशबीह आती है, मेटाफोर नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने ख़ास तौर पर इसको एसोसिएट किया है कि आप अल्लाह की सिफात के साथ मेटाफोर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह के लिए आता है ना अल्लाह का हाथ, अब जब अल्लाह का हाथ आता है तो मैं ये नहीं कह सकती अल्लाह का हाथ, मैं अपना हाथ दिखाकर अल्लाह के हाथ की तशबीह नहीं दे सकती। आप समझ रहे हैं, हम कहते हैं अल्लाह की कुर्सी, अब कोई अल्लाह की कुर्सी को बना कर नहीं बता सकता कि अच्छा इस तरह की होगी अल्लाह की कुर्सी, कि हमने बहुत ही मैग्निफिसेंट कुर्सी बना ली और हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह की कुर्सी या अल्लाह का अर्श ऐसा होगा। इमाम इब्न तैमिया जो हैं उनका कहना ये कि जब इंसान मेटाफोर्स बयान करता है तो टेंडेंसी ये होती है कि फिर इंसान शिर्क की तरफ जाता है, टेंडेंसी ये होती है कि फिर इंसान गैब को जो है वो समझने की कोशिश करने लग जाता है। क्या मैं और आप दुनिया में बैठ के किसी जगह को बनाकर ये कह सकते हैं ये बिल्कुल जन्नत की तरह है? कोई भी नहीं कह सकता। हम ये कह सकते हैं कि हाँ दुनिया की जन्नत बनी हुई है, मतलब ये दुनिया की जन्नत है, लेकिन ये कहना कि वो जो अल्लाह ने सेवन स्काइज के ऊपर जन्नत बनाई है ये जन्नत बिल्कुल वैसी है, और मैं तो मेटाफोर के तौर पर कह रही हूँ, इसका मतलब है हम गलती कर रहे हैं। जब अल्लाह ने कहा कि वो जन्नत ऐसी है जो मैंने अपने मोमिनीन बंदों के लिए सालेहीन के लिए तैयार की, जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, जिसको किसी कान ने नहीं सुना, जो उसके झरनों की जो उसकी वाटरफॉल्स की आवाज़ें हैं वो दुनिया में किसी पानी की आवाज़ से कंपेयर नहीं हो सकते, जब अल्लाह ने कहा कि उसको किसी इंसान के जहन से गुजारा भी नहीं गया, तो आप और मैं दुनिया में मेटाफोर करके जन्नत नहीं बना सकते। तो इमाम इब्न तैमिया का कहना यह है कि कुरान में मेटाफोर नहीं आता, और वो कहते हैं कि ये किसने कहा कि दीवार की विल नहीं है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम जानते हैं अल्लाह के रसूल बताते थे कि मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ वहाँ रॉक्स जो हैं मुझे सलाम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जिस तने के साथ, जिस बार्क के साथ, जिस दरख्त के साथ टेक लगाकर मिंबर पे खुतबा दिया करते थे, जब आपका मिंबर बन गया और आप उस जगह से मूव कर गए उस दरख्त की जगह से, तो उस दरख्त ने रोना शुरू कर दिया, और वो दरख्त इतना रोया कि उसकी हिचकियों की आवाज़ें आने लग गईं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसको हक किया और उसको प्यार किया और उसको समझाया, फिर वो चुप हो गया। और बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल उसको ना हक करते जाके तो आज तक लोग उसकी सिसकियों की आवाज़ें सुन रहे होते। तो ये अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने किस चीज़ को क्या तस्बीह का मादा दिया है। वल्लाहु आलम। सूरत ज़िलज़ाल हम अम्मा पारा में पढ़ते हैं, आपको आई एम श्योर आती होगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन यह हा जो आया ज़मीन के लिए आया, उस दिन ज़मीन बयान करेगी सारे अहवाल। तो ज़मीन जो और जो कुछ ज़मीन पर है, स्कॉलर्स कहते हैं रॉक्स बोलेंगी, पहाड़ बोलेंगे, दरख्त बोलेंगे, जितना भी ज़मीन के ऊपर मटेरियल होगा सब बोलेगा। तो अगर मुझे दीवार की आवाज़ नहीं आती, मुझे दीवार की तस्बीह सुनाई नहीं देती, तो मैं ये नहीं कह सकती कि दीवार तस्बीह नहीं करती। आप सुने जब स्कॉलर्स तस्बीह के मुकाम को डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं आप जब जब तस्बीह के कॉन्सेप्ट को आप सोचें तो तस्बीह को यूं समझें, तस्बीह दो तरह की होती है। एक होती है तस्बीह कौली, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, आप और मैं अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं। एक होती है तस्बीह हाली, अपने हाल से अल्लाह की तस्बीह करना, अपने किरदार से, अपने पूरी प्रेजेंस से अल्लाह का बंदा नज़र आना, अपने हर अमल में अल्लाह की बात को प्रमोट करने वाले बन जाना, तस्बीह हाली है। कायनात और इंसान दोनों तस्बीह करते हैं, मैं और आप तस्बीह कौली और तस्बीह हाली भी करते हैं, ज़ुबान से तस्बीह कौली करते हैं, और अपने एक्शन से जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जब हम उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां अल्लाह ने जाने का कहा है, जब हम जिन जगहों पर जाना चाहते हैं और वो जायज़ जगह हैं वहां हम वैसे ही जाते हैं जैसे अल्लाह ने जाने को कहा है, जब हम मामलात करते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, तो हम तस्बीह हाली कर रहे होते हैं, अपने हाल से, अपने किरदार से अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। इसी तरह कायनात को देखें, कायनात की तस्बीह हाली हमें नज़र आती है, सूरज का एक अप्रोप्रियट टाइम के ऊपर निकलना, सूरज का अप्रोप्रियट टाइम के ऊपर जो है वो सनसेट हो जाना, सूरज का और चांद का जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूस रहना, सोलर सिस्टम के रूल्स का कंटिन्यूस रहना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंटिन्यूस रहना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक प्रॉपर डिजिट्स के साथ चलते रहना, ये कायनात की तस्बीह हाली है, तस्बीह कौली भी है कायनात की। तस्बीह हाली तो हमें नज़र आती है साउंड परफेक्ट सिस्टम्स की वजह से, लेकिन तस्बीह कौली हमें सुनाई नहीं देती। सूरज जो है वो अपनी अपने कौल से कैसे अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, अल्लाह ने कहा ला यफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। तो इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि हमें क्या पता हो दीवार की विल है या नहीं है, जब दीवार तस्बीह कर सकती है तो दीवार की विल भी हो सकती है, अल्लाह जिसको देना चाहे। हमने ये अगर ये कहा कि नहीं दीवार तस्बीह नहीं करती, इसका मतलब है वो कहते हैं हम कुल इल्म होने का दावा कर रहे हैं, और हम में से कोई भी कुल इल्म होने का दावा नहीं कर सकता, हम में से किसी के पास कुल टोटैलिटी में इल्म नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ उतना ही इल्म है, मिन इल्मी ही, जितना अल्लाह ने अपने इल्म में से दे दिया है, और वो बहुत थोड़ा सा है, बिशई इन, बहुत थोड़ा सा है। तो इमाम इब्ने तैमिया का कॉल यही है कि ये दीवार के लिए जो यहाँ पर आया है ये मेटाफोर नहीं है, असल में अल्लाह ताला ने ये बात मेंशन की है कि अल्लाह ताला ने इस दीवार को जो था वो एक तरह से ये इल्का किया होगा कि दीवार जो थी वो गिरना चाहती थी। एक इल्मी बहस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ के ये अंदाज़ा होता है कि कुरान में पढ़ने को और समझने को कितना कुछ है, और हम सिर्फ रमज़ान में तो नहीं कुरान के सामने आकर बैठेंगे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे, और अल्लाह हमें अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, हमारी पढ़ाइयों के साथ, हमारे जॉब्स के साथ, हमारे घरों की जिम्मेदारियों के साथ हमें मौका दे कि हम कुरान से जुड़े रहें। जिसके पास जितनी फुर्सत है, जो अपने हफ्ते में से चार दिन निकाल सकता है वो चार दिन जुड़े, जो दो दिन निकाल सकता है वो दो दिन जुड़े, जो एक दिन निकाल सकता है वो एक दिन जुड़े, जो हफ्ते में एक दिन नहीं निकाल सकता वो कम से कम महीने या 15 दिन में दो मरतबा तो एक मरतबा निकले। असल चीज़ ये है अल्लाह आपकी कोशिश काउंट करेगा, हम पढ़ चुके हैं एंड रिज़ल्ट तो अल्लाह नहीं देखेगा, अल्लाह मेरी कोशिश देखेगा कि मेरी कोशिश ने कितना मुझे अल्लाह के करीब किया। तो यहाँ पर आया कि उन्होंने एक दीवार देखी जो कि गिरने वाली थी, अब क्या किया, फ़अक़ामहू, तो हज़रत ख़दर ने एक चॉइस ये की कि उसको फ़िक्स कर दिया। और अहादीस में आता है कि हज़रत ख़दर ने अपने साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस लेबर वर्क में लगा लिया। अब आप इमेजिन करें, सफ़र की थकन थी और भूख लग रही थी, और जो बस्ती वाले थे उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो गुस्सा भी आ रहा था। और उसके बाद जो है दीवार बनाना कोई आसान काम है, अहादीस में आता है कि हज़रत ख़दर ने मिट्टी इकट्ठी की, फिर कहीं से पानी फेच करके लेकर आए, फिर उस मिट्टी में पानी और मिट्टी को मिक्स किया, और उसके बाद ईंटें इकट्ठी की, और फिर दीवार को लिटरली ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ट किया। तो दीवार बिल्ड इट्स अ लेबर वर्क, वक्त लगता है इसके अंदर। और साथ में मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा लिया, जाओ तुम ईंटें लेकर आओ, अब जाओ तुम पानी लेकर आओ। आप सोचें भूख लग रही हो तो एक कदम उठाना भी ऐसे लगता है कि जैसे ओहद पहाड़ का एक कदम हो गया, उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, भूख तो लग रही थी, तो उनको ये अजीब लगी बात। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सब के बाद, दीवार बनाने के बाद, दीवार बना ली खामोशी से, उसके बाद कहा, कहला, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लव शिता लत्तखज़्त अलैहि अजरा, वैसे अगर आप चाहते तो आप अपनी इस मेहनत पर वेजेस ले सकते थे, मतलब कोई इसकी कीमत ही ले लेते। जब ये लोग आपको फ्री में खाना देने को राज़ी नहीं है तो आपने फ्री में इनकी दीवार क्यों बनाई, कुछ पैसे ही ले लेते तो हमसे खाना ही खरीद लेते थोड़ा सा उन पैसों से। आप नोटिस करें, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का ऑब्जेक्शन नहीं था, सजेशन था। उन्होंने ये नहीं कहा था आपने दीवार क्यों बनाई, ये नहीं कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर आप चाहते, जैसे आप डरते रहते नहीं बोलते तीसरी दफ़ा में, वैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ ना चलें, आपके मियाँ कह रहे हैं मैंने यहाँ जाना है, आप कहीं और जाना चाह रही हैं, फिर आप एक दफ़ा मना करते, दूसरी दफ़ा फिर कहते, अच्छा अगर आप कहें तो हम यहाँ ना चलें। तो बिल्कुल इतनी मोहब्बत नज़र आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम की भी। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर आप चाहते तो आप इस पर जो है वो उजरत ले लेते। इमाम अल-क़ुर्तुबी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा था, मगर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद अपने ऊपर कंडीशन लगा चुके थे, सो उनका यह सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ, उन्होंने खुद कंडीशन लगाई थी। आयत नंबर 78 में आगे आया, कौला हाज़ा फिराकु बैनी व बैनक, हज़र ख़दर ने कहा बस अब ये मेरे और आपके सफ़र का एंड है, जुदाई का वक्त है। क्योंकि इन्होंने हज़रत मूसा ने खुद कंडीशन सेट की थी। सऊनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, अब अन करीब मैं आपको उन मामलात की एक्सप्लेनेशन दूंगा जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। आयत नंबर 79, अम्म सफीना तो, अब हज़रत खदर ने जो है वो एक एक करके तीनों वाक़यात का, जो तीन वाक़यात हुए इनका बिहाइंड कर्टन डिज़ाइन कोड बताना शुरू करना है। आपके और मेरे हर अमल के पीछे एक डिज़ाइन कोड होता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद के लाते हैं तो उस पर एक बार कोड लगा हुआ होता है ना, आपका और मेरा जो भी अमल होता है उसके पीछे एक डिज़ाइन काम कर रहा है अल्लाह का, जिसको आप और मैं अल्लाह कहते हैं। और बहुत से लोग जो हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं एक नेचर, एक मदर नेचर काम कर रही है, एक फ़ादर टाइम काम कर रहा है, अल्लाह काम कर रहा है, अल्लाह की बनाई हुई कदर है और अल्लाह का हुक्म है जो पीछे काम कर रहा है, अल्लाह की हिकमत है जो हर अमल के साथ अटैच होती है। आपका और मेरा यहाँ आकर बैठ जाना ये अचानक से हमारे दिमागों में कोई इल्का नहीं हुआ था कि अच्छा मैं यहाँ जाऊँगी, इट्स अ प्रोसेस जिससे हमें अल्लाह ने गुजारा है और उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने यहाँ तक बिठाया। आज हम जिंदगियों में जहाँ जहाँ पर भी हैं, आप अपनी जिंदगियों में पीछे मुड़कर खुद थोड़ा सा भी अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में जहाँ आप आज खड़ी हैं वहाँ पहुँचने से पहले बहुत से डाइवर्जन्स मिलेंगे, और हो सकता है वो डाइवर्जन्स आपको उस वक्त पसंद ना आए हों, लेकिन अब आप अगर उसको ऑब्ज़र्व करती हैं तो आपको लगता है कि उन डाइवर्जन्स में खैर थी। इसी तरह से हज़रत खदर के ज़रिए अल्लाह ताला इन तीनों वाक़यात का, जो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आए थे और उनकी अक्ल और लॉजिक से बिल्कुल अगेंस्ट थे, अल्लाह ताला हज़रत खदर के ज़रिए जो है उसका डिज़ाइन कोड अब बताएंगे। तो उन्होंने बताना शुरू किया, अम सफ़ीना तो एज़ फॉर द बोट, जैसे आप कहती हैं ना ये जो कश्ती थी ये क्या थी, फ़कानत ली मसाकीन या अमलून फिल बहरी, ये कुछ मिसकीनों की थी जो समंदर में काम करते थे, यानी कि मछेरे थे, फिशरमैन थे। मिसकीन का लफ्ज़ यहाँ पर आया है, मिसकीन कौन होता है, मिसकीन बहुत ब्रॉड टर्म है, मिसकीन के अंदर वाइट कॉलर्ड लोग भी आ जाते हैं, और वाइट कॉलर्ड लोग वो होते हैं कि जिनके पास हो सकता है नौकरियां भी हों, जॉब्स भी हों, हो सकता है उनकी अपने कोई छोटी सी दुकान भी हो, लेकिन वो फिर भी मिसकीन हो सकते हैं। मिसकीन कहते हैं, अब सिंपल डेफिनेशन मिसकीन की याद रखें, जो कुरान जहाँ जहाँ मिसकीन लेकर आएगा, आपको यतामा और मसाकीन की टर्म कुरान में फ्रीक्वेंटली मिलती है। मिसकीन के लिए एक जुमला, एक वन लाइनर याद रखें, मिसकीन वो है जो फ़कीर से अलग है, याद रखिएगा, मिसकीन इज़ नॉट फ़कीर, मिसकीन इज़ अ हायर लेवल देन फ़कीर, लेकिन मिसकीन वो है कि जिसकी अर्निंग्स उसकी ज़रूरियात से कम होती है। सही, जितना कमा रहा होता है उससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा होता। हम ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं। मिसकीन वो है जितना वो कमा रहा हो उतना वो अपनी ज़रूरियात के लिए उसको काफ़ी ना पा रहा हो, सिंपल, ज़रूरतमंद जिसको आप कहते हैं। इसीलिए ज़रूरतमंद और मिसकीन जो है वो तकरीबन एक तरह देखा जाता है। मिसकीन का रूट वर्ड है बास स्कॉलर्स के नज़दीक सीन काफ नून, सकना, सकून। सकून किसको कहते हैं, जैसे आप किसी लेटर के ऊपर सकून देखते हैं, एक होता है ना ज़बर, एक होती है ज़ेर, एक होती है पेश, और एक होता है सुकून। जिस सुकून की हरकत को आप देखते हैं इसका मतलब है वो लफ्ज़ जो है वो अपने पिछले लफ्ज़ की सपोर्ट के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा। सुकून आप कहती हैं स्टेशनरी, एक इंसान जो हालात के दायरे में आकर स्टक हो गया है और उनमें से निकल नहीं पा रहा, वो मिसकीन है। अपने किसी फाइनेंशियल क्रंच में फंस गया है और फिर उनमें से निकल नहीं पा रहा, वो मिसकीन है। अरबी में कहते हैं साहिबुल कलील हीला, जिसके पास उन हालात में से निकलने की एबिलिटी ना हो, फंस जाए वो किसी उस चीज़ के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है तबरानी के अंदर और सही हदीस है, आपने फरमाया मिसकीन उन रजुलुन इमरअतहुला, समझ आए, वो आदमी मिसकीन है जिसकी बीवी नहीं है, यानी वो बेचारा अपने कामों में खुद ही स्टक हुआ हुआ है इतना कि बाहर के काम भी संभालता है और घर के काम भी संभालता है और कोई बीवी नहीं है उसकी जो उसके कामों को कर सके। मिसकीन जिसको अपना खुद बहुत ख्याल रखना पड़े, और ज़्यादातर हमारा जो अब माशरे का एक स्ट्रक्चर बन गया है इसमें नहीं पता चलता कि कौन से लोग मिसकीन हैं, उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोगों में घुलेंगे मिलेंगे नहीं। ख़ास तौर पर अपने अपने इलाके के मसाकीन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मर्दों के लिए काफ़ी आसान है, अगर मर्द करना चाहें तो अपने अपने इलाकों के मसाकीन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर अपने इलाके की मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का रिवाज आम हो जाए, इसलिए कि जब आप मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फ्रीक्वेंटली आपको लोगों से सलाम दुआ करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और ये पसंदीदा है मस्जिद के अंदर कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के लिए जाएं और बग़ैर किसी को सलाम दुआ किए बग़ैर बाहर ना आएँ। थोड़ा सा घुलने मिलने का टाइम, थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके नेक्स्ट डोर हो सकता है कोई ऐसा इंसान रहता हो। यकीनन मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ ये मामला नहीं है इतना, लेकिन बाकी इलाकों में यह है मामला। आपको नहीं पता कि आपके नेक्स्ट डोर जो है वो कितना मिस्कीन इंसान रहता है, वाइट कॉलर्ड लोग। और वाइट कॉलर्ड लोग जो हैं इनकी कैटेगरी बहुत ब्रॉड है, और ये वो लोग होते हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, जिसको आप सफ़ेद पोश कहते हैं। बिल्कुल, तो इनको ढूंढना और इनकी मदद करना यकीनन एक बहुत बड़ा फेल है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही लफ्ज़ एक जो मेंशन किया है मिस्कीन का, इसी एक लफ्ज़ से या इस कहानी में जो आया कि ये कश्ती मसाकीन की थी, इससे स्कॉलर्स ने ज़कात की रूलिंग्स भी निकाली हैं, इसी एक जुमले से जो यहाँ जुमला आया ना, फ़म्मा सकीना तो फ़कानत ली मसाकीन या अमलूना फिल बाहरी। स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका मतलब है मिस्कीन के पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप कहें कि लो इसके पास तो ये भी है, तो हम इसको कैसे मिसाल के तौर पर ज़कात दे सकते हैं। ज़रूरत की चीज़ उसकी कोई ऐसी हो जो उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर ना कर रही हो, जिसको आप ज़कात दें उसके घर में टीवी हो सकता है। जी हाँ, टीवी होना तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। टीवी कौन सी कीमत का आता है, मेरे ख्याल से शायद कितना का आता होगा, 30-40 हज़ार का।